लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वेटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 17 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले बोंजोर्नो, इल वांजेलो दि क्वेस्टा पेनुल्टिमा डोमेनिका देल्लानो लिटुर्जिको ci presenta il discorso di Gesù sulla fine dei tempi.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। पूजन पद्धति वर्ष के अंत के पहले रविवार का सुसमाचार पाठ अंतिम दिनों पर यीशु के उपदेश को प्रस्तुत करता है। यीशु ने इसे यरूशलेम के मंदिर के सामने प्रस्तुत किया था, जिसको देखकर कुछ लोग कह रहे थे कि वह सुंदर पत्रों और मनौती के उपहारों से सजा है, किन्तु यीशु ने भविष्यवाणी की कि वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ ढह दिया जाएगा। यीशु द्वारा मंदिर के विनाश की घोषणा इतिहास का अंत नहीं है। श्रोता जो जानना चाहते थे कि ये चिन्ह कब और कैसे प्रकट होंगे, यीशु बाइबल के प्रकाशना ग्रंथ की भाषा में जवाब देते हैं। इसके लिए वे दो विरोधाभासी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पहला भयावह घटनाओं की श्रृंखला, आपदाएं, युद्ध, अकाल, दंगे और अत्याचार, और दूसरा है आश्वासन, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी पाका नहीं होगा। संत पापा ने कहा कि पहले में इतिहास की वास्तविकता पर नजर डाली गई है, जो आपदा, हिंसा और जख्म से प्रभावित है, जिसने सृष्टि, हमारे आम घर तथा मानव परिवार जो इसमें निवास करती है, उसे घायल किया और साथ ही साथ ख्रिस्त समुदाय को भी घायल किया है। आज हम कई युद्धों को देखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को। दूसरा चिन्ह है यीशु का आश्वासन, जो यह बतलाता है कि हिंसा और प्रतिकूलता के इस इतिहास को जीते हुए ख्रिस्तों को किस तरह का मनोभाव धारण करना है। संत पापा ने कहा, ख्रिस्तों का मनोभाव क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा, ईश्वर पर आशा का मनोभाव, जो दुखद घटनाओं को हम पर हावी होने नहीं देते, बल्कि ये साक्ष्य देने का अवसर है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त के शिष्य डर और पीड़ा के गुलाम बनकर नहीं रह सकते, परंतु वे इतिहास को जीने के लिए बुलाए जाते हैं, उस निश्चितता के साथ बुराई की विनाशकारी शक्ति को दूर करने के लिए कि भले कार्य के पीछे हमेशा प्रभु की कृपा एवं कोमल आश्वासन है। यही एक महत्वपूर्ण चिन्ह है कि ईश्वर का राज्य हमारे निकट है। यही उस दुनिया का साकार रूप है जैसा ईश्वर चाहते हैं। वे प्रभु ही हैं जो हमारे अस्तित्व का संचालन करते तथा चीजों एवं घटनाओं के अंतिम लक्ष्य को जानते हैं। प्रभु हमें इतिहास का निर्माण करने हेतु सहयोग देने के लिए बुलाते हैं कि हम उनके साथ शांति के निर्माता एवं भविष्य में मुक्ति और पुनरुत्थान की आशा के साक्षी बने। विश्वास हमें दुनिया के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर यीशु के साथ चलने का साहस प्रदान करता है, उस निश्चितता के साथ कि पौत्रात्मा की शक्ति बुराई की शक्ति को बांध देगी तथा उन्हें ईश्वर के प्रेम की शक्ति के अधीन कर देगी। प्रेम श्रेष्ठ है या सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। ख्रिस्त शहीदों का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे शहीद जिनकी शहादत हमारे समय में हुई है, उनकी संख्या पहले के शहीदों से कहीं अधिक है। वे अत्याचार के बावजूद शांति के स्त्री और पुरुष हैं। उन्होंने हमारे लिए सबसे मूल्यवान खजाना प्रेम और दया के सुसमाचार की रक्षा करने और जीने हेतु धरोहर छोड़ दिया है। हमारे दैनिक जीवन में जब हम किसी के द्वारा चोट पहुंचाए जाते हैं अथवा दर्द महसूस करते हैं तो उन्हें दिल से क्षमा कर देना है, और जब हम घृणा महसूस करते हैं तब हम उस व्यक्ति के लिए प्रेम से प्रार्थना करें जो हमसे घृणा करता है। तब संत पापा ने कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
La Vergine Maria sostenga con la sua materna intercessione il nostro cammino di fede quotidiano.
धन्य कुंवारी मरियम, अपनी ममतामय मध्यस्थता द्वारा हमारे दैनिक जीवन में विश्वास की यात्रा पर इतिहास में आगे ले चलने वाले प्रभु का अनुसरण करने में हमारा साथ दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. आमीन।
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने जेसुइट पुरोहित एमिलियो मोस्कोसो की धन्य घोषणा की याद करते हुए कहा, कल इक्वाडोर के रिवोबाम्बा में धन्य फादर एमिलियो मोस्कोसो की धन्य घोषणा हुई, जो यीशु समाज के शहीद हैं, जिन्हें सन 1857 में काते कलिसिया में अत्याचार के दौरान मार डाला गया था। एक विनम्र धर्म सामाजिक प्रार्थना के प्रेरित एवं युवाओं के प्रशिक्षक का उदाहरण हमारे विश्वास की यात्रा और ख्रिस्त साक्ष्य को बल प्रदान करे। तब संत पापा ने ताली बजाकर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद संत पापा ने गरीबों के लिए विश्व दिवस की याद दिलाते हुए कहा, आज हम गरीबों के लिए विश्व दिवस मना रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है दरिद्र को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशा व्यर्थ नहीं होगी। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने विश्व भर के पलियों एवं धर्म प्रांतों में सबसे वंचित लोगों के लिए ठोस आशा प्रदान करने हेतु एकात्मकता के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। संत पापा ने संत पेतरस प्रांगण के मेडिकल केंद्र में सेवा देने वाले सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, मैं पीड़ितों एवं जरूरतमंद लोगों के हित में सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई बहनों के प्रति इस प्रकार के साक्ष्य कभी कम ना हो। तब संत पापा ने विश्व में गरीबों के आंकड़ों पर खेद प्रकट करते हुए उनके लिए मौन प्रार्थना का आह्वान किया। तत्पश्चात संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया जो इटली एवं विभिन्न देशों से आए थे, और अंत में थाईलैंड एवं जापान की प्रेरितिक यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना की मांग करते हुए उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Comincerò il viaggio in Thailandia e Giappone. Vi chiedo una preghiera per questo viaggio apostolico e auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
देखेंगे सारा जहां पार जाएंगे तेरा यीशु रहता, नीले आसमान के पार जाएंगे तेरा यीशु रहता। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 17 नवंबर को गरीबों के तीसरे विश्व दिवस को चिन्हित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में रोम के कुछ गरीबों और स्वयंसेवकों के साथ, जो बेघर और सबसे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, पवित्र मिसा बलिदान का अनुष्ठान किया। संत पापा ने कहा, गरीब स्वर्ग तक हमारी पहुंच को आसान बनाते हैं, वे कलीसिया के खजाने हैं। अपने प्रवचन में संत पापा ने कहा कि दुनिया की सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। संत पापा ने विश्वासियों को हमेशा जीवित ईश्वर को अपने में वहन करने हेतु आमंत्रित किया। वे हमारे द्वारा उनके लिए बनाए गए किसी भी भव्य मंदिर से कई गुना अधिक बड़े हैं, और मानव व्यक्ति हमारे पड़ोसी दुनिया के सभी मूल्यवान वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। इसलिए जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, इसे महसूस करने के लिए यीशु ने हमें दो प्रलोभनों के बारे में चेतावनी दी है। पहला, जल्दीबाजी का प्रलोभन। संत पापा ने उन लोगों के खिलाफ चेतावनी दी जो हमें बताते हैं कि अंत तुरंत आ गया है या तुरंत आ रहा है। उन्होंने कहा, कितनी बार हम सब कुछ जानने की तीव्र जिज्ञासा में बहक जाते हैं, नवीनतम सनसनीखेज या निंदनीय समाचार द्वारा, मनगढ़ंत भयानक कहानियों द्वारा, या उन लोगों द्वारा जो हमें बताते हैं कि यह अभी या कभी नहीं है। इस तरह की जल्दीबाजी ईश्वर से नहीं आती है। इस जल्दीबाजी में हम ईश्वर के लिए भी समय दे नहीं पाते। हमारे पड़ोसी, गरीब, बुजुर्ग और लाचार, जिन्हें हमारी जरूरत है, उनके लिए भी समय नहीं निकालते हैं। संत पापा ने कहा कि जल्दीबाजी के प्रलोभन से ऊपर उठने के लिए यीशु हमें जीवन में मायने रखने वाली बातों पर दृढ़ता से अमल करने को कहा, और वो है ईश्वर और हमारे पड़ोसी। दूसरा प्रलोभन है आत्म केंद्रीयता। एक क्रिश्चिय को खुद पर केंद्रित नहीं अपितु दूसरों पर केंद्रित होना चाहिए। एक सच्चा क्रिश्चिय यीशु की भाषा यानी प्रेम की भाषा का प्रयोग करता है, अहम का त्याग कर दूसरों के हित के लिए कार्य करता। वह उन गरीबों की मदद करता है जो उसका बदला चुका नहीं सकते। संत पापा ने कहा कि गरीब ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, क्योंकि वे अपनी भाषा नहीं बोलते, वे अपने दम पर, अपनी ताकत पर खुद का समर्थन नहीं कर सकते, उन्हें किसी और की जरूरत होती है। गरीब हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस तरह से सुसमाचार को जीना चाहिए, भिखारियों के जैसे हमें ईश्वर के पास आनी चाहिए। संत पापा ने अंत में कहा, वे गरीब व्यक्ति जो मुझसे प्रेम और उदारता की आशा करते हैं, वे मुझे स्वर्ग और ईश्वर के पास सीधे ले जाते हैं। गरीब हमें उस धन को प्रकट करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जो स्वर्ग और पृथ्वी को एकजुट करता। वह धन जिनके लिए जीवन वास्तव में जीने लायक है, वह है प्रेम का धन। पवित्र मिसा के बाद संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित तीर्थ यात्रियों और विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। इसके उपरांत उन्होंने लगभग 1500 गरीब लोगों और करीब 50 स्वयं सेवकों के साथ वाटिकन के संत पापा पोल छठे सभागार में दोपहर का भोजन किया। भोजन परोसने से पहले संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और भोजन पर उन पर और उनके परिवारों पर ईश्वर की आशीष हेतु प्रार्थना की। संत पापा ने भोजन तैयार करने वालों को भी सहृदय धन्यवाद दिया। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी 23 से 26 नवंबर तक प्रेरितिक यात्रा के पहले जापान के लोगों को एक वीडियो संदेश भेजा। संदेश में संत पापा ने कहा कि यह सुरक्षात्मक वृत्ति हमारे दिलों में गूंजती है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए विशेष रूप से सशस्त्र संघर्षों से उत्पन्न वर्तमान खतरों के प्रकाश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत पापा ने कहा, आपका देश युद्ध से होने वाली पीड़ा से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं कि परमाणु हथियारों के विनाशकारी शक्ति को मानव इतिहास में फिर से दोहराया नहीं जाएगा। अपनी बात स्पष्ट करते हुए संत पापा ने कहा, परमाणु हथियारों का उपयोग अनैतिक है। संत पापा ने कहा कि जापान के लोग धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद के मूल्य को जानते हैं, जो विभाजन को दूर करने में मदद करता, मानवीय गरिमा के सम्मान को बढ़ावा देता और सभी लोगों के अभिन्न विकास को आगे बढ़ाता है। संत पापा ने सच्ची शांति के बल पर विचार करते हुए कहा, शांति सुंदर है और जब यह वास्तविक होता है तो यह कभी पीछे नहीं हटता, यह खुद को हर ताकत से बचाता है। संत पापा ने कहा कि जापान को विशाल प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा गया है, जिसकी उन्हें सराहना करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, प्रकृति का एक तत्व जो जापानी संस्कृति में विशेष महत्व रखता है वह है चेरी का खिलना, जो जीवन की सुंदरता का प्रतीक है, साथ ही इसकी नाजुकता का भी। अंत में संत पापा ने उन सभी को धन्यवाद दिया जो उनके आने की तैयारी कर रहे हैं और संत पापा ने उन्हें तथा सभी जापान वासियों को अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। और संत पापा फ्रांसिस ने जापान की अपनी प्रेरितिक यात्रा के लिए अपने अनुवादक के रूप में येसु समाजी फादर रेंचो डी लुका को मनोनीत किया है। फादर जॉर्ज बेरगोलियो वर्तमान में संत पापा एक समय में फादर रेंचो डी लुका के रेक्टर थे। फादर बनने के बाद फादर रेंचो डी लुका मिशनरी के रूप में जापान भेजे गए। 35 साल बाद फादर रेंचो जापान में येसु समाजियों के प्रांतीय सुपीरियर हैं। वे संत पापा के संदेश को जापानी भाषा में अनुवाद करेंगे। फादर रेंचो डी लुका संत पापा के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते और अर्जेंटीना में एक साथ बिताए समय को याद करते हैं। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के संदेश को जापानी लोगों के लिए अनुवाद करने की खुशी जाहिर की और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 18 नवंबर को ट्वीट प्रेषित कर उदारता के कार्यों को करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, स्वर्ग में हमारा स्वागत करने के लिए केवल ईश्वर ही नहीं होंगे बल्कि वे सभी होंगे जिन्हें ईश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा था। उनके साथ हमने अपने जीवन को साझा किया और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।